ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय श्रूयतां श्रूयतां नित्यम् गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्यचरितामृतम् श्रूयतां श्रूयतां नित्यम् गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्यचरितामृत श्रूयतां श्रूयतां नित्यम् गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्यचरितामृतम्
आप सबका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत श्लोक जो बोर्ड पे लिखा गया है, यह श्लोक वेदव्यास रचित महाभारत का श्लोक है। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक को रखते हैं। यह श्लोक उस बात का प्रमाण देता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण है। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और आज का प्रवचन प्रारंभ करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, सुवर्ण वर्ण है मांगो वरांग संचनांग दी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांगश्चंदनागदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांगश्चंदनागदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। एक दो जन बोलिए,
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रिय जगत करो करुणावतारो हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का श्री राधा गिरधारी मंदिर के इस रविवार यह प्रीति भोज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कि हमारे आराध्य भगवान श्री राधा गिरधारी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर उन्हीं की गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ दिन के बाद बहुत जल्द एक बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है और हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए साल का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है और वो है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही है, परंतु इस बात को इस कलयुग में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा में वर्णन करते हैं, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य जीव है और उस असंख्य जीवों में से तार मध्य मनुष्य योनि स्व अल्प बहुत कम है। इस संसार में मनुष्य बहुत कम है और मनुष्य में भी म्लेच्छ यवन शबर कंक खस आदिवासी इत्यादि जो अपने लक्ष्य के बारे में नहीं जानते हैं, जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे बहुत हैं। एक तो मनुष्य की संख्या बहुत कम है और मनुष्य में भी सभ्य मनुष्य की संख्या बहुत कम है और उस सभ्य मनुष्यों में भी वेद और शास्त्र को स्वीकार करने वाले मनुष्य तो उससे भी कम है। और वेद और शास्त्र को स्वीकार करने वाले में भी भगवान की भक्ति करने वाले तो बहुत कम हैं। इसलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा अर्जुन से कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् ययति सिध्यते। ये अर्जुन सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य में से कश्चित् कोई एक विरला ही मेरा भजन कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले और उनका भजन करने वाले बहुत कम है इस संसार में, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों में भी चैतन्य महाप्रभु को जानने वाले बहुत कम हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सबको जाना होगा, परंतु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में तब जीव जाएगा जब उसे पहचानेगा। भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार, भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप पहचानने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रछन्न अवतार हैं। भगवान जैसे ऐश्वर्य प्रकट करते हैं कहीं भी कभी भी, वैसे नहीं है। भगवान भक्त के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, इसलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। और प्रायः इस समाज के लोग कृष्ण पर तो विश्वास करते हैं कि वे भगवान हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है, इसके हमारे वेद और शास्त्र में बहुत प्रमाण दिए गए हैं। इस संसार में जब भगवान आते हैं, भगवान का अवतार होता है, तो बहुत बहुत वर्ष पूर्व वेद और शास्त्रों में यह पहले से ही लिखा होता है कि कलयुग में इस समय में भगवान का ऐसा अवतार होगा। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है, इसके हमारे शास्त्रों में सहस्त्र कई सैकड़ों हजारों प्रमाण हैं, और उन प्रमाणों में से एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत है, महाभारत का एक श्लोक। महाभारत की रचना आज से 5000 वर्ष पूर्व की गई और उसके रचयिता है श्री वेद व्यास जी, और 5000 वर्ष पहले यह महाभारत 1,00,000 श्लोक से भरा हुआ यह ग्रंथ लिखा गया, और उस 1,00,000 श्लोकों में से यह एक श्लोक आपके सामने इस बोर्ड के ऊपर उपस्थित है। महाभारत के अनुशासन पर्व का यह श्लोक है। महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम दिए गए हैं, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के सहस्त्र 100 नाम दिए गए हैं, 1,000 नाम दिए गए हैं। तो जहां पर महाभारत में भगवान विष्णु के 1,000 नाम दिए गए हैं, उन 1,000 नामों के बीच में यह श्लोक आया है। भगवान के 1,000 नामों में से 10 नाम आपके सामने उपस्थित हैं, और यह श्लोक गवाही दे रहा है, यह प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण ही है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, हम सब इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, और यदि ध्यान से इस श्लोक को समझा जाए तो आप इस निर्णय पर पहुंच सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु निश्चित साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। सबसे पहले सभी भक्तों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह श्लोक महाभारत में अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम का यह श्लोक है, इसलिए यह श्लोक में नाम दिए गए हैं, और सबसे पहला नाम है सुवर्ण। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, सबसे पहला शब्द है सुवर्ण वर्ण। सुवर्ण का अर्थ क्या होता है? सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ साक्षात सब लोग जानते होंगे, सुवर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। सुवर्ण वर्ण, यदि हम इसका यह अर्थ लेते हैं तो वर्ण का अर्थ होता है रंग, और सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, सोने जैसा रंग। इस पहले शब्द का अर्थ है सोने जैसा रंग, परंतु यदि विचार किया जाए तो इसके बाद वाला जो शब्द है वह हेमांग, हेम अंग, अंग का अर्थ होता है इंद्रिया अंग, और हेम का अर्थ भी सोना होता है, तो दूसरे शब्द का अर्थ भी सोने जैसा अंग या सोने जैसा रंग होता है। तो आप देखिए, एक श्लोक में 2 बार सोने जैसा रंग, सोने जैसा रंग, ये हो नहीं सकता है। वेद व्यास जी इतने प्रखर पंडित हैं और भगवान के महान भक्त हैं, साक्षात भगवान ही है, तो वे कभी अपने इस ग्रंथ में और श्लोक में ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। कभी भी किसी भी शास्त्र में, काव्य में या किसी भी श्लोक में एक ही चीज दूसरी बार रिपीट होती है तो उसकी अपूर्णता मानी जाती है। तो यहां पर सुवर्ण वर्ण का अर्थ यदि हम सोने का वर्ण, सोने का रंग लेंगे तो उसके बाद भी हेम अंग लिखा है, और यदि दोनों का अर्थ सुवर्ण, सोने जैसा रंग, सोने जैसा रंग ले लेंगे तो विष्णु सहस्त्र नामों में से 9999 नाम ही रहेंगे, एक नाम घटेगा क्योंकि दोनों एक ही नाम हुए। इसलिए यह सुवर्ण वर्ण का अर्थ सोने जैसा रंग नहीं है। सुवर्ण वर्ण का अर्थ यदि हम व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो वर्ण का अर्थ होता है क, ख, ग, घ इत्यादि स्वर। और वर्ण आप सीखे होंगे जब स्कूल में पढ़ते होंगे तब, संधि, विच्छेद, स्वर, वर्ण। तो क, ख, ग, घ या ए, बी, सी, डी अल्फाबेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसे हिंदी में वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण का अर्थ होता है शब्द, अक्षर, और सुवर्ण का अर्थ होता है सबसे अच्छा शब्द, सबसे अच्छा अक्षर या सबसे अच्छा नाम। सुवर्ण का अर्थ होता है सबसे अच्छा नाम। तो विचार किया जाए कि संसार में सबसे अच्छा नाम कौन सा है, सुवर्ण, सबसे अच्छा वर्ण, सबसे अच्छा नाम कौन सा है? तो भागवत प्रमाण है, भागवत में लिखा गया है नामना मुख्य तरम नाम। इस संसार में हजारों करोड़ों अरबों नाम रखते हैं लोग, परंतु नामना मुख्य तरम नाम, सभी नामों में मुख्य और श्रेष्ठ सुवर्ण सबसे अच्छा नाम कौन सा है? कहते हैं कृष्णाख्यम में परंतप। हे परंतप, इस संसार में सबसे अच्छा वर्ण, सबसे अच्छा नाम यदि कोई है तो वो है कृष्ण। ये दो वर्ण जो है इस संसार में सबसे अच्छे वर्ण है, इसलिए कृष्ण को सुवर्ण कहा जाता है, सुवर्ण। तत्काल मन में एक घटना याद आ रही है, भागवत के मैत्रेय मुनि आप सब लोग जानते होंगे, चौथे स्कंद में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा कहते हैं। मैत्रेय मुनि जब अपने गुरुदेव के पास विद्या सीखने गए तो गुरुदेव ने मैत्रेय मुनि की परीक्षा लेने के लिए कह दिया कि तुम यहां से जाओ और मेरे लिए सुवर्ण लेकर आओ। तो मैत्रेय मुनि वहां से निकल गए और मैत्रेय मुनि रास्ते में जाते जाते सोचने लगे कि गुरुजी ने सुवर्ण क्यों मंगाया है, गुरुजी तो वैराग्यशाली है, वैराग्य है उनके जीवन में, गुरुजी को सोने से क्या मतलब। तो मन ही मन में विचार रहे थे कि गुरुजी ने सुवर्ण लाने के लिए कहा है, परंतु फिर उस क्योंकि वे भगवान के भक्त थे इसलिए उसको विचार आया कि वास्तव में सुवर्ण का अर्थ सोना नहीं है, सुवर्ण सबसे अच्छा वर्ण, सबसे अच्छा नाम तो कृष्ण का है, इसलिए गुरुजी ने कृष्ण को लाने के लिए कहा है। मैत्रेय मुनि तुरंत नेपाल में गंडकी नदी में गए, स्नान किए और गंडकी नदी से शालिग्राम शिला को लिए और अपने गुरुजी के पास आए और गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने कहा था सुवर्ण लाने के लिए, ये मैं सुवर्ण लेकर आया हूं। गुरुजी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर मैत्रेय जी को आशीर्वाद दिया कि अब तुम भागवत कथा सुनाने के लिए योग्य हो। भक्तों, तात्पर्य यह है सुवर्ण का अर्थ भगवान श्री कृष्ण होता है, जो पहला शब्द है, सुवर्ण का अर्थ कृष्ण होता है और उस कृष्ण का जो वर्णन करता है उसे सुवर्ण वर्ण कहा जाता है। कृष्ण के वर्णन करने वाले को सुवर्ण वर्ण कहा जाता है। अब आप इतिहास खोलकर देख लीजिए कृष्ण का वर्णन सबसे ज्यादा किसने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ही एक नाम सुवर्ण वर्ण है, महाभारत में आया है। चैतन्य महाप्रभु नित्य निरंतर इस दो अक्षर, दो वर्ण का उच्चारण करते रहते थे और बारंबार भगवान श्री कृष्ण का नाम अपनी जीवा पर लेकर नाचते रहते थे। और केवल स्वयं नहीं लेते थे, दूसरों को भी बुलवाते थे। महाप्रभु के जन्म के घटना में आया है, चैतन्य महाप्रभु इस संसार में हरिनाम देने के लिए आए, परंतु वे इस संसार में आए उसके पहले ही यह सारा जगत भगवान के नाम में गूंजने लगा। और महाप्रभु के बाल्य काल में भी देखा गया है, वे जब दूसरों को कृष्ण का नाम बुलवाना चाहते थे तो वे रोने लगते थे, और इतना रोने लगते थे पिता जगन्नाथ मिश्रा और माता सची बहुत सुंदर सुंदर खिलौने इत्यादि लाकर देते थे, फिर भी शांत नहीं होते थे। और तब जाकर कोई भक्त यदि हरि बोल, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
यदि कोई इस प्रकार से सुवर्ण अर्थात कृष्ण का नाम लेता तो चैतन्य महाप्रभु जो कई घंटों से रोते थे वे हंसने लगते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के माता पिता सबको पता चल गया कि इस निमाय को, इस चैतन्य को यदि प्रसन्न रखना है तो महामंत्र जपना होगा। तो महाप्रभु केवल सुवर्ण या कृष्ण का नाम लिए ही नहीं, सबको बुलवाए। उनके जीवन में आया है श्रीवास आंगन में रात तो रात भर नित्य निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में अपने जीवन में बहुत उपदेश नहीं दिए हैं, सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में कुछ किया है तो वह भगवान का नाम। भगवान का नाम लेते थे, नाचते थे, कूदते थे और झूमते रहते थे। संसार के लोग गाली देते थे, पागल कहते थे, मूर्ख कहते थे, क्यों इस प्रकार से नाच रहा है गा रहा है। कुछ लोग कहते भी थे कि भगवान का नाम एक जगह पर बैठकर लेना चाहिए, आप अपराध कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से और नम्रता से उसे कहते थे कि मैं क्या करूं, मैं मेरे गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के पास जाकर कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ वेद और शास्त्र का ज्ञान दो। तो मैंने गुरुदेव को कहा कि वेद और शास्त्र का ज्ञान दो, तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम बड़े मूर्ख हो, इसलिए वेद और शास्त्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टिकेगा नहीं। महाप्रभु कहते हैं गुरु मोहे मूर्ख जानी करी लो शासन, गुरु ने मुझे मूर्ख जाना इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम वेद और शास्त्र के अधिकारी नहीं हो, तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तुम्हारे लिए यही बढ़िया है। चैतन्य महाप्रभु लोगों को कहते थे कि गुरुदेव की आज्ञा से मैं भगवान का नाम लेने लगा, परंतु जैसे जैसे मैं ये महामंत्र लेने लगा वैसे वैसे मेरे जीवन का अनुभव, मेरे जीवन का स्वभाव बदलने लगा, संसार भूलने लगा, संसार से विरक्त होने लगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, और धीरे धीरे मैं पागल सा हो गया। जब लोग मुझे पागल कहने लगे तो मैं फिर से गुरुजी के पास गया कि गुरुजी ये आपने कैसा मंत्र दे दिया है, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारो बल, गुरुजी कौन सा कैसा मंत्र दे दिया है, न जाने इसमें कितनी शक्ति है कि जपिते नाम करी लो पागल, कि ये जैसे जैसे मैं ये महामंत्र जप रहा हूं वैसे वैसे मैं पागल बनता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा मन इस संसार में नहीं लगता है, केवल कृष्ण ही कृष्ण मुझे दिखाई देते हैं। तब मेरे गुरुदेव ने कहा कि हे चैतन्य अब यह महामंत्र तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर फल दे रहा है, बस यही करते रहो। महाप्रभु कहते थे कि बस उस दिन से लेकर आज तक मैं पागलों की तरह भगवान का नाम ले लेकर महामंत्र लेकर नाचता रहता हूं। तो सुवर्ण वर्ण चैतन्य महाप्रभु नित्य निरंतर यह सुवर्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते थे, इसलिए उनका एक नाम सुवर्ण है। तत्पश्चात दूसरा शब्द क्या है, हेमांग। इस विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में दूसरा नाम दिया है हेम अंग। हेम का अर्थ होता है सोना और अंग का अर्थ होता है हमारे हाथ पांव इत्यादि यह शरीर। जिसका शरीर सोने के समान पीला है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने की तरह है, उसे हेमांग कहा जाता है। तो भक्तों यह शब्द यह नाम भी चैतन्य महाप्रभु के लिए ही यूज हुआ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान के स्वरूप में एक ऐसा स्वरूप था जिसका रंग श्याम न होते हुए पीला था, गौर अंग था, हेम अंग था। तो मन में प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु यदि साक्षात कृष्ण है तो फिर कृष्ण का रंग तो श्याम है, नीला है, तो चैतन्य महाप्रभु का रंग पीला कैसे हो गया, हेम अंग कैसे हो गया। तब अब इस बात को सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, इस बात को सबसे ज्यादा रूप गोस्वामी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानने वाले हैं। इसलिए रूप गोस्वामी का जब हम प्रणाम मंत्र लेते हैं तो क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य के मन को अभीष्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है रूप गोस्वामी सब कुछ जानते थे। इसलिए चैतन्य भगवान श्री कृष्ण श्याम होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु गौर अंग के, यह हेम अंग के क्यों हुए, रूप गोस्वामी अपनी पद्यावली में और अपने ग्रंथ कड़चा में लिखते हैं कि श्री राधिका प्रणय महिमा चैतन्य महाप्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि वे श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में आए तो इस संसार के लोग उनकी भक्ति करने लगे, उससे प्रेम करने लगे, और भगवान ने देखा कि मेरे भक्त मेरी भक्ति करके मुझसे ज्यादा सुखी होते हैं। भगवान कृष्ण का अर्थ ही है सुख, जिससे नित्य निरंतर सुख निकले। कृषि भू वाचक नच निवृत्ति वाचक तैर एक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृष्ण नाम का अर्थ ही होता है सुख और आनंद। तो ऐसे सुख और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है वह कृष्ण से भी ज्यादा सुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे से ज्यादा सुखी ये राधा रानी है, मेरे से ज्यादा सुखी ये संसार के लोग हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति करने के लिए समाज को छोड़ देते हैं, घर को छोड़कर सिर मुंडवाकर मंदिर में बैठ जाते हैं, उसे ऐसा कौन सा सुख मिलता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, और मैंने तो आज तक कुछ नहीं छोड़ा। भगवान यह विचार करने लगे, भगवान को लोभ हो गया कि मेरे भक्त को जो सुख मिल रहा है वह सुख मुझे प्राप्त करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भक्त बनकर इस कलयुग में अवतार लेने के लिए सोचे, परंतु भक्त तब बना जाता है जब भक्त का भाव हो। भगवान तो आश्रय तत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे भक्त बनने के लिए इस संसार में से किसी भक्त का भाव लेना होगा। तो वे ढूंढने लगे इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो ढूंढते ढूंढते अंतिम नतीजे पर पहुंचे कि श्रीमती राधा रानी इस संसार की सबसे बड़ी भक्ता है। तब चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को चुरा लिए, ले लिए, स्वीकार कर लिए। अब जैसे श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के भाव को ले लिया, तो उसी समय श्याम कृष्ण गौर हो गए, क्योंकि भाव के अनुसार हमारे शरीर का रंग बदलता है। वैसे कृष्ण का रंग श्याम है, परंतु राधा रानी का जो भाव है भगवान के प्रति उन्नत उज्जवल भाव है। उन्नत उज्जवल का अर्थ होता है सफेद। तो जब राधा रानी का भाव स्वीकार किया तो भगवान भी गौर हो गए। एक भक्त ने बहुत सुंदर लिखा है कि हमारे भगवान का एक नाम माखन चोर है, और उनका स्वभाव ही है चोरी करना। वे कहीं भी जाते हैं तो चोरी किए बिना नहीं रह सकते हैं। कलयुग में भी आए तो चोरी किए बिना नहीं आए, आए तो राधा रानी के भाव को लेकर ही आ गए। और जैसे जैसे भाव होता है वैसे शरीर का रंग होता है। मैं कल कह रहा था कि मान लीजिए कोई आराम से अपने घर पर सो रहा हो तो उसका मुख प्रसन्न है, सफेद रंग का है, लेकिन घर से बाहर यदि ट्रेन में बैठा और ट्रेन में किसी ने थप्पड़ मार दिया या गाली दे दी तो वह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, कान लाल हो जाएंगे, मुंह लाल हो जाएगा। तो क्रोध का भाव आया तो रंग बदल गया। तो जैसा भाव होता है वैसा रंग, शरीर का रंग हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का जब उन्नत उज्जवल भक्ति का भाव ग्रहण किया तब श्याम वर्ण के कृष्ण गौर हो गए। और गौर में भी कैसे, जैसे राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए सोने के समान उनका रंग है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण तपाए हुए सोने के समान, सोने के हेम अर्थात सोने के वर्ण के हो गए, उनका अंग सोने के समान हो गया, इसलिए उसे हेमांग कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष ताहार तप्त कांचनेर द्युति जहार छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति। तो चैतन्य महाप्रभु का रंग पीला है, सोने के समान है, इसलिए उसे हेमांग कहा जाता है। तो दूसरा नाम भी चैतन्य महाप्रभु के लिए। अब तीसरा शब्द है, तीसरा नाम है वरांग। वरांग का अर्थ होता है वर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होता है वर प्लस अंग। जिसका अंग वरण करने योग्य है, और व्यक्ति वरण किसका करता है, जो श्रेष्ठ है, इसलिए इसका अर्थ होता है जिसका अंग श्रेष्ठ है, जिसके श्रेष्ठ अंग है उसे वर अंग कहा जाता है। अब श्रेष्ठ अंग का क्या अर्थ होता है? हमारे अंग दो प्रकार से श्रेष्ठ हो सकते हैं, एक तो सुंदरता से, सौष्ठव से, और दूसरा प्रभाव से, काम करने की दृष्टि से। जब मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था तो मैंने सोचा कि इस संसार में कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं परंतु काम कुछ नहीं कर सकते हैं, बंबई में रहने वाले लोग, स्त्रियां इत्यादि, परंतु गांव में रहने वाले सुंदर भले न हो, दिखने में थोड़े काले हो, परंतु काम उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अंग में भी दो प्रकार का विभाजन होता है, वरांग के ऊपर मैं बोल रहा हूं, श्रेष्ठ अंग वाला जो है उसे वरांग कहा जाता है। और श्रेष्ठ अंग दो प्रकार के से होते हैं, एक तो सुंदरता की देखने की दृष्टि से और एक प्रभाव की दृष्टि से। और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखा जाए तो उनके अंग सुंदरता की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से भी बहुत सुंदर थे और प्रभाव की दृष्टि से भी बहुत सुंदर थे। तो पहले हम सौष्ठव इत्यादि देखने में कैसे थे उसका वर्णन करेंगे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, चैतन्य सिहेर नव दीपे अवतार। चैतन्य सिंह, चैतन्य महाप्रभु को सिंह के साथ तुलना दे रहे हैं। चैतन्य नाम का सिंह नवद्वीप में अवतार धारण किया है और कैसा है, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंह रहुकार। सिंह के जैसे उनके हाथ हैं और सिंह के जैसे उनकी हुंकार है। तप्त है मकांति सम प्रकांड शरीर, कहते हैं कि उनका अंग कैसा है, तप्त हेम कांति, तपाए हुए सोने के समान उसका अंग है, और प्रकांड शरीर, उनका शरीर बहुत प्रकांड है, बहुत ऊंचा है उनका कद। नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि जे गंभीर, और उनकी ध्वनि, उनका आवाज कैसा है, कहते हैं मेघ के समान उसका आवाज है। हमें यदि बोलना है तो माइक में बोलना पड़ता है, लाउड स्पीकर में बोलना पड़ता है, परंतु महाप्रभु को बोलने के लिए माइक की जरूरत नहीं थी। कहते हैं मेघ के समान, नव मेघ के समान, एक साथ नौ मेघ आवाज करते हैं, वैसा स्वर चैतन्य महाप्रभु का था। देर दिया विश्व तारे जई आप नार हाथे, चारी हस्त है महापुरुष विख्याते। उनका शरीर बहुत दीर्घ था, उनका हस्त, उनके चरण बहुत बहुत बड़े थे। कितने बड़े थे, कहते हैं आज अनुलंबित भुज कमल लोचन तिल फूल जिनी नासा सुधांशु वदन। उनके हाथ आजानु लंबी तक, घुटन के जितने लंबे थे घुटन तक उनके हाथ थे, और उनका वदन, उनका मुख कैसा था, कहते सुधांशु के समान। हमारे मंदिर में सुधांशु प्रभु है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि सुधांशु का अर्थ क्या होता है, परंतु जब ये पढ़ा तब पता चला कि सुधांशु का अर्थ होता है चंद्रमा। और कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को सुधांशु वदन कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का वदन, मुख कमल सुधांशु के समान अर्थात चंद्रमा के समान है। और उनकी नासिका कैसी है, कहते हैं तिल फूल, जैसे तिल के फूल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, हमने तो देखे नहीं है परंतु तिल के फूल बहुत सुंदर होते हैं, सुना है पढ़ा है। चैतन्य महाप्रभु की नासिका तिल के फूल के समान था, नासिका मुख कमल हाथ पांव ये बहुत बड़े बड़े थे। इस पर अनुमान लगाया जाता है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब अष्ट सात्विक विकार आया और एक जगह पर जब खड़े रहे तो उनके चरण की छाप वहां पर पड़ गई। तो हमारे भक्तों ने उस चरण की छाप को जब नापा तो उस चरण की छाप 13.5 इंच लंबी हुई। चैतन्य महाप्रभु का चरण कितना लंबा चौड़ा था, कहते 13.5 इंच का। साधारण व्यक्ति का चरण 10.5 इंच का होता है, साधारण व्यक्ति में भी जो सबसे लंबा अमिताभ बच्चन जैसा कोई होता है तो उसका 10.5 इंच, बाकी हमारा तो 8.5 इंच 7.5 इंच का होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण 13.5 इंच लंबे थे, और अनुमान लगाने वाले तो चरण से अनुमान लगाया करते हैं कि फिर उनके हाथ कितने लंबे होंगे। तो यदि चैतन्य महाप्रभु के चरण 13.5 इंच लंबे हैं तो उनके हाथ 23 इंच लंबे होंगे। साधारण व्यक्ति के हाथ 18 इंच लंबे होते हैं परंतु चैतन्य महाप्रभु के हाथ 23 इंच लंबे हैं। और हाथ और चरण की यदि अनुमान लगाया तो ऊंचाई का भी अनुमान होगा। चैतन्य महाप्रभु की ऊंचाई 85 इंच से भी लंबी थी। मैंने आज पढ़ा 90 में 1 इंच की ऊंचाई चैतन्य महाप्रभु की थी, और साधारण व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होती है, 60 इंच की, ज्यादा से ज्यादा 65 इंच की होती है। तो इस प्रकार से महाप्रभु का कद, महाप्रभु की लंबाई, उनके हाथ बहुत लंबे लंबे, जिसको महापुरुष के जो गुण कहे जाते हैं वे सभी गुण उनमें थे। इसलिए भागवत में प्रणाम करते हुए कहते हैं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो महाप्रभु का कद बहुत लंबा था, इसका वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में लिखते हैं, एक घटना का वर्णन करते हैं कि एक दिन ऐसी घटना हुई, चैतन्य महाप्रभु के साथ सभी गौर भक्त नगर संकीर्तन करने के लिए रास्ते में आए। श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, शील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा हरे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में एक घटना का वर्णन करते हैं कि एक बार हजारों हजारों की संख्या में भक्तगण रास्ते पर आ गए और रास्ते में नगर संकीर्तन करने के लिए आए और महाप्रभु बीचों बीच थे। कहते कि उन्नत नासिका सिंह ग्रीव मनोहर सभा है ते सुपीन सुदीर्घ कलेवर। महाप्रभु का कलेवर सुदीर्घ था, दीर्घ में भी दीर्घ। एतेक लोकेर जे हैल समुचय सरिषा पड़ी लेवो तल तल नाही है। उस रास्ते पर इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग थे, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अपने हाथ में सरसों के बीज अर्थात राय के दाने लेकर आप उनके ऊपर फेंको तो एक भी दाना नीचे न गिरे, इतनी भीड़ लगी हुई थी रास्ते में, और एक व्यक्ति दूसरों को नहीं देख सकता था, इतने लोग रास्ते में खड़े थे। लेकिन वहां पर भी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चतुर दिके आपन विग्रह भक्त गण बाहिर हैला प्रभु श्री सचिनंदन। लाखों की मात्रा में भक्त थे, कोई एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, परंतु गौरांग महाप्रभु सची नंदन चैतन्य महाप्रभु बीचों बीच खड़े थे और बाहिर हैला और सबसे ऊपर, सबसे बाहिर, सबसे ऊपर दिखते थे और सब लोग और किसी को देखे या न देखे महाप्रभु को तो सब लोग देख सकते थे। क्यों? क्योंकि 90 इंच की हाइट जो थी। तो महापुरुष के गुण उनमें थे और वृंदावन दास ठाकुर उनके इस अंग की महिमा बताते हुए कहते हैं, जिनिया कंदर्प कोटि लावण्येर सीमा हेन नाही जहा दिया करीब उपमा। चैतन्य महाप्रभु का अंग इतना सुंदर था, वरांग वर अंग श्रेष्ठ अंग, चैतन्य महाप्रभु का अंग इतना सुंदर था कि उसकी उपमा नहीं दे सकते। जैसे सूरदास जी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने अपने एक भजन में लिखा है कि उपमा हरि तनु देखी ल जानी। इस संसार में जितनी भी उपमा है, इस संसार में अच्छे किसी का अच्छा मुख कमल हो तो उसकी उपमा चंद्रमा के साथ देते हैं, किसी का अच्छी, किसी की अच्छी भुजा हो तो वे अजगर के साथ उसकी उपमा देते हैं, परंतु सूरदास जी कहते हैं कि ये जितनी भी उपमा है उस उपमा को पता चला कि कृष्ण ने जन्म लिया है, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया है, तो ये सब लोग भाग गए। कहते हैं कि भगवान के हाथ को देखकर, भगवान के हाथ की उपमा अजगर के साथ दिया करते हैं कवि लोग, तो भगवान के हाथ को देखकर अजगर बिल में जाकर छिप गया कि भाई अब हमको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हमसे सुंदर हाथ जो आ गए। भगवान के मुख कमल को देखकर चंद्रमा ऊपर चला गया, एक कवि की उत्प्रेक्षा है। और भगवान के कटी कमर की उपमा सिंह के साथ देते हैं, तो वैसे सिंह जो है रास्ते में घुमा करते थे, हमारे रोड पर भी घुमा करते थे, कवि का कहना है। परंतु जैसे ही पता चला कि कृष्ण ने, महाप्रभु ने, भगवान ने जन्म लिया है, तो सिंह भी जंगल में जाकर छिप गया कि अब यहाँ पर रहने जैसा नहीं है, क्योंकि हमसे भी सुंदर इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। तो कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उन पर मूर्छित हो जाते हैं, उनकी उपमा हम दे नहीं सकते हैं। चांचर चिकुरे शोभे माल तीर माला मधुर मधुर हासे जिन जिनी सर्व कला। उनके गले में बहुत सुंदर मालती की माला है और उनकी मधुर मुस्कान ऐसी मुस्कान है कि लाखों लोग बेहोश हो जाते हैं। कृष्ण जब रास्ते से चलते थे और जब वो मुस्कान थोड़े से मुस्कुराते थे, हंसते नहीं थे, हंसना और मुस्कुराने में बहुत अंतर है। हंसने का अर्थ होता है दांत दिखाकर, जो दांत दिखाकर हंसता है उसे हंसना कहते हैं, परंतु जो हंसे भी और दांत भी न दिखे उसे स्मित कहा जाता है, मुस्कान कहा जाता है, और पुरुष लोग बहुत कम यह कर सकते हैं। भगवान जब यह स्मित मुस्कान करते थे तो गोपियां लट्टू हो जाती थी, बेहोश मूर्छित हो जाती थी। आज यदि भगवान होते तो डॉक्टरों को बहुत मालामाल हो जाते हैं और डॉक्टर कृष्ण के पीछे ही चलते, जितने लोग कृष्ण को देखकर मूर्छित हो जाए डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। तो बहुत सुंदर मुस्कान है। दुई महाभुज जैन कनों के स्तंभ, उनके दोनों महाभुज कैसे हैं? कहते कनक अर्थात सोने, सोना, गोल्ड, जैसे गोल्ड का, सोने का स्तंभ होता है वैसे उनकी भुजा थी। पुल केर शोभा जैन कनक कदम्ब, और उनकी शोभा कदम के वृक्ष के समान थी। तो इस प्रकार भगवान के अधर सुंदर, भगवान के दशन दांत सुंदर, भगवान के मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये मधुर पति के सब कुछ मधुर है, वल्भाचार्य जी ने कुछ नहीं छोड़ा। अखिलम मधुरम वसनम मधुरम तिलकम मधुरम 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 मधुरम, सब कुछ मधुर है, भगवान का सब कुछ मधुर है, इसलिए उसे वरांग कहा जाता है। वर अंग में जो श्रेष्ठ है, जिसका अंग श्रेष्ठ है उसे वरांग कहते हैं। तो ये तो हुआ, बाहर से अच्छा दिख रहा था, चैतन्य महाप्रभु के अंग सुंदर दिखते थे, परंतु उनमें प्रभाव क्या था? कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अंग में इतना प्रभाव था कि वे किसी को स्पर्श कर दे तो वह स्पर्श किया हुआ व्यक्ति भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में तरबोल हो जाता। कहते हैं प्रत्यक्ष ताहार तप्त कांचनेर द्युति जाहर छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति। चैतन्य महाप्रभु को कोई व्यक्ति एक बार भी देख लेता तो उनके जीवन का पूरा पूरा अज्ञान नष्ट हो जाता। कितना भी अज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, महाप्रभु को यदि देख लेता, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता। जीवेर कलमश तमो नाश करी वारे अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। और वास्तव में भगवान के और जितने जितने अवतार हुए उन अवतारों में भगवान ने शस्त्र धारण किया। राम आए तो धनुष बाण से सबका विनाश किया, कृष्ण आए तो अपने हाथों से ही सबको, किसी को मुंह का मारा तो किसी को लात मारा, परशुराम भगवान आए तो फरशु से सबको मारा। जितना जितना भगवान का अवतार हुआ सब में भगवान ने शस्त्र का इस्तेमाल किया, परंतु चैतन्य महाप्रभु भगवान का एक ऐसा स्वरूप जिन्होंने शस्त्र का उपयोग नहीं किया। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अंग ही शस्त्र का काम करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अंग को देखकर ही सामने वाला पिघल जाता था, पानी पानी हो जाता था। एक से एक महाप्रभु की लीला में है, दिग्विजय केशव कश्मीरी जो पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में विजय प्राप्त करके आया, परंतु महाप्रभु के सामने बिल्कुल पानी। तो महाप्रभु का ऐसा अंग था जिसे देखकर अज्ञान नष्ट हो जाए। बहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टि चाय करी या क्लमश नाम प्रेमेते भाषाए। श्री अंग श्री मुख जेई करे दर्शन तार पाप क्षय हय पाय प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु के श्री मुख श्री हस्त का यदि कोई दर्शन कर ले तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त बन जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को वरांग कहा जाता है। और भी बहुत बहुत लीलाएं हैं। सनातन गोस्वामी के को बहुत बड़ा रोग लगा था, चमड़ी का रोग, जिसमें पस और रस्सी निकल रही थी, खून निकल रहा था। परंतु एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को अपने गले लगाया, अपने अंग का स्पर्श किया तो दूसरे दिन वह सारा रोग समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अंग लावण्य की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से भी सुंदर है और उनका प्रभाव भी सुंदर है। देखने में भी सुंदर है और काम करने में भी सुंदर है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को वरांग कहा गया। अब तीसरा नाम कौन सा है? चंद नांगदी। चंद नांगदी का अर्थ होता है कि जो अपने अंग पर चंदन धारण करता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चंद नेर अंगद बाला चंदन भूषण नृत्य काले परी करे न कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर पर चंदन लगाकर और अपने हाथ पर चंदन का लेप करके, अपने हाथ में चंदन लेकर बहुत सुंदर संकीर्तन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु चंदन धारण करते थे इसलिए उसे चंदनांगदी कहा जाता है। तत्पश्चात और एक नाम है संन्यासकृत। संसार के लोग और किसी वस्तु के ऊपर विश्वास करे या न करे, परंतु संन्यासकृत ये जो शब्द महाभारत में आया है इसके ऊपर सबको झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि महाभारत के, याद रखें, महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में यह शब्द आया है। भगवान के अवतार का नाम नहीं है, साक्षात भगवान का नाम है। बताइए, साक्षात भगवान ने, इतिहास खोलकर देख लीजिए, कब संन्यास लिया? भगवान ने कभी भी संन्यास नहीं लिया। केवल इस कलयुग में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने संन्यास धारण किया, इसलिए यह संन्यासकृत चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए और जीवों का उद्धार करने के लिए संन्यास ग्रहण किए। वास्तव में भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे बहुत कारण होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेना इसके पीछे भी बहुत कारण है। भाव की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से देखा जाए तो आचार्यगण बहुत सुंदर कथा कहते हैं, वृंदावन श्री राधा और कृष्ण अपने नित्य धाम के प्रेमी हैं और वे जब वृंदावन में आज से 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए तो बहुत सुंदर सुंदर लीला करते थे। एक दिन की बात, राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए कुछ समय दिया था कि आप 5 बजे हमारे कुंज में आ जाइएगा। राधा रानी तो 3 बजे पहुंच गई अपनी सहेली सखियों को लेकर और पहुंचकर बहुत सुंदर वह कुंज सजाया, उसमें बहुत सुंदर क्या कहते हैं झूला लगाया, बहुत सुंदर सुंदर फूल चयन करके आए, फूल लगाए, बहुत सुंदर उस कुंज को सजाया कि कृष्ण आएंगे उसको हम सुख प्रदान करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। परंतु उसी समय राधा रानी का एक ग्रुप है ब्रज वृंदावन में, भक्तों में भी भाव का अंतर होता है और राधा रानी के बिल्कुल सामने है चंद्रावली। तो चंद्रावली ने देखा कि कृष्ण राधा से मिलने जा रहे हैं, इसलिए तुरंत कृष्ण जैसे ही राधा से मिलने जा रहे थे तो वे रास्ते में आ गई और चंद्रावली ने कहा कि मैंने आपके लिए बहुत सुंदर कुंज को सजाया है, आप 2 मिनट के लिए हमारे वहां आ जाइए। कृष्ण तो मन में सोच रहे थे कि वहां पर टाइम दे चुका हूं 5 बजे पहुंचने का और ये मुझे कहां लेकर जा रही है। परंतु कृष्ण तो रसिक शेखर है, सभी रसों के भोगता है, किसी को दुखी नहीं करते हैं। हाँ, राम अवतार में कई ऋषि मुनि भगवान से प्रेम करना चाहते थे, वह सुरपंखा भी आई थी भगवान से विवाह करने के लिए, भगवान ने कह दिया कि मेरे जीवन का एक ही सिद्धांत है कि एक बाण एक वचन और एक नारी, जो भी प्रेम करना है अगले जन्म में अगले द्वापर युग में मिलो, सबको प्रसन्न रखूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण किसी को नाराज नहीं करते हैं। चंद्रावली ने कहा कि कुछ समय 2 मिनट के लिए आ जाइए। अब भक्तों का स्वभाव होता है चंद्रावली की तरह, कृष्ण को लेकर गई अपने कुंज में और वहां पर बिठाया और कृष्ण 5-10 मिनट बैठे, कहा चलो अब मैं चल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, हमने आपके लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया है। भगवान तो रसों के भोगता है, भोजन का रस लेने लगे। भोजन का रस लेते लेते आधा घंटा बीत गया। जब भोजन समाप्त हो गया कुछ देर तक बैठे, फिर आधे पौने घंटे के बाद कृष्ण कहते हैं कि अब मैं चलूं। तो कहा नहीं नहीं, अब जूस भी बनाया है, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। तब वो मिल्क शेक पिलाया तो उसमें 15-20 मिनट निकल गया। वैसे करते 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 5 घंटा बीत गया और वहां पर 3 बजे से सब तैयारी शुरू थी, 5 बजे से रात देख रही थी, रात के 10 बज चुके और फिर भी कृष्ण नहीं आए और चंद्रावली ने यहां पर बहुत लेट करवा दिया। जब आधी रात को कृष्ण राधा रानी के पास जाने के लिए निकले, अब दुखी किसको नहीं करते हैं, वादा किया है तो मिलना है, भले देर से मिले। आप भी टेंशन मत लीजिए, सब लोग भजन कर रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो आज नहीं तो कल अवश्य आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण गए राधा रानी के पास, परंतु राधा रानी उस समय के बीच में तो इतनी क्रोधित हो चुकी थी, कृष्ण लेट आए नो प्रॉब्लम, परंतु चंद्रावली के पास गए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हमारे पास आने चाहिए, उनके पास क्यों गए। तो बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित करके कह दिया कि अब मैं कृष्ण का मुख देखना नहीं चाहती हूं, ललिता विशाखा दोनों द्वार पर खड़े रहो और यदि वह लंपट आ भी जाए तो उसे बाहर भेज देना, अंदर मत आने देना। अब कृष्ण गए, राधा रानी दरवाजा बंद करके कुंज में बैठ गई और बाहर ललिता और विशाखा खड़ी। कृष्ण आए, आकर कहा ऐसे फूल घुमाते घुमाते आए, चलो जाने दो अंदर। ललिता और विशाखा ने हाथ रोक दिया कि आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। कृष्ण कहते अरे मुझे टाइम दिया है। ललिता विशाखा ने कहा घड़ी देखो जरा अपना, कितने बजे बुलाया था आपको, आप अंदर नहीं जा सकते हो। राधा रानी ने ना कह दिया है, हम मर जाएंगे परंतु फिर भी आपको अंदर नहीं जाने देंगे। कृष्ण ने बहुत कहा, पांव पड़े, बहुत कहने लगे कि एक बार मुझे जाने दो, एक बार जाने दो, परंतु ललिता और विशाखा नहीं मानी। जब ललिता और विशाखा नहीं मानी तो वह रातों रात कृष्ण वहां से रोते रोते वापस गए। कृष्ण भगवान हमारे लिए भले भगवान है परंतु ब्रज में तो वह रोते भी रहते हैं, उनकी पिटाई भी होती है। बेचारे रोते रोते आए तो उसी समय योग माया पूर्णमासी का रूप लेकर रास्ते में मिली। ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान का ही लीला है सब। तो भगवान की एक शक्ति है योग माया, जो पूर्णमासी का रूप लेकर आई और कहने लगी बेटा क्यों रो रहे हो। कृष्ण ने कहा कि राधा से मिलने नहीं दे रहे हैं ललिता और विशाखा। कहा रो मत मैं कुछ उपाय करती हूं। ठीक है जल्दी करो जो करना है। तो पूर्णमासी ने कहा एक काम करो चलो अपने कपड़े निकालो। कृष्ण ने कहा ये क्या कर रही हो। कृष्ण पूर्णमासी ने कहा मैं जो कहती हूं वैसे तुम करो। तो भगवान श्री कृष्ण को सारे कपड़े निकालकर सन्यासी का वेश बना दिया। कहा कि सन्यास वेश धारण करो। कृष्ण ने सन्यास वेश धारण कर लिया और फिर बाल भी कैसे भी करके मुंडन करके छिपा दिए, हाथ में डंडा दे दिए, कमंडल दे दिए। और फिर पूर्णमासी ने सिखा दिया कि वहां जाकर कहना कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूं और मैं ऐसा शास्त्र जानता हूं, ऐसा मंत्र जानता हूं, जो व्यक्ति जितना भी कितना भी क्रोध में क्यों न हो सारा क्रोध में नष्ट कर देता हूं। और किसी पति पत्नी के बीच में और प्रेमी प्रेमिका के बीच में कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो मैं सेटलमेंट करा देता हूं मंत्रों के द्वारा, ऐसा जाकर कहना। भगवान समझ गए, ओके सब समझ में आ गया। कृष्ण गए सन्यासी का रूप लेकर और सन्यासी का रूप लेकर ललिता और विशाखा खड़ी है वहां पर आए और आकर कहने लगे कि मैं सन्यासी हूं, बहुत ज्योतिष जानता हूं और बहुत योग भी जानता हूं, कोई कितना भी क्रोधित क्यों ना हो शांत कर देता हूं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो समाप्त कर देता हूं, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ भी हो तो वो भी ठीक कर देता हूं। ललिता विशाखा तो आखिर तो राधा रानी की हितेशु है, कहने लगी अच्छा तो हमारी सखी जो अंदर है वे बहुत क्रोध में है, आप एक काम करो अंदर जाओ और उसे शांत करो, और उसका कृष्ण के साथ बहुत झगड़ा होता रहता है तो कुछ सेटलमेंट करा। तो कहा कि उसके लिए मुझे उसका पांव देखना पड़ेगा, चरण देखना पड़ेगा। कहा कि पंडित जी यहां मंत्र से कुछ नहीं हो सकता है। नहीं नहीं उसका चरण देखना पड़ेगा। ठीक है चलो चरण दिखा देती हैं। दरवाजा खोल के उस सन्यासी बाबा को अंदर लेकर गए। अंदर लेकर गए तो राधा रानी अपने मुंह पर दुपट्टा बांधकर बिल्कुल बेड के ऊपर सोई हुई थी, अपना मुख नहीं दिखाना चाहती थी। तो कहा कि अरे ये तो बहुत गंभीर है, केवल चरण से काम नहीं चलेगा, इसके मस्तक की रेखा भी पढ़नी होगी। बहुत गहरा केस है। तो राधा को कहा कि राधा अपना जरा चेहरा दिखाओ, पंडित जी को सब ठीक कर देंगे, दिखाओ दिखाओ। राधा ने बहुत ना कहा लेकिन फिर भी अंत में कैसे भी करके राधा ने उस सन्यासी को जैसे अपना चेहरा दिखाया, ललिता विशाखा नहीं समझ सकी परंतु राधा रानी समझ गई यह कोई नहीं यह लंपट भगवान श्री कृष्ण ही। तो राधा ने राधा के मुख से निकल गया यह प्रेम भाव से निकला था कि अरे लंपट अब कुछ नहीं मिला तो सन्यासी बनकर मेरे पास आए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक दिन वास्तविक सन्यासी बन जाओगे और जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं और मैं तुम्हारे विरह में रो रही हूं उसी प्रकार तुम तुम्हारे ही विरह में रोओगे और तुम्हारे ही विरह में उनकी याद करते रहोगे। चिन्मय धाम में जो भी बात होती है वह चिन्मय हो जाती है, वह निश्चित हो जाती है। यद्यपि यह क्रोध में नहीं यह प्रेम से कहा था परंतु चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, चिंतामणि धाम में जो बोलते हैं वह भी सत्य हो जाता है। इसलिए राधा रानी के मुख से निकल गया कि सन्यासी बनना पड़ेगा और मेरे कृष्ण के विरह में तुम्हें भी भटकना पड़ेगा, तो उसी राधा रानी के श्राप को भगवान शिरोधार्य कर लिए और कलयुग में वही भगवान सन्यास ग्रहण किए। और जैसे राधा रानी कृष्ण के लिए रोती थी, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भजन साधन उनका नाम लेती थी, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की तरह कृष्ण के विरह में गंभीरा में 18 साल के लिए रोते रहे। तो इस प्रकार महाप्रभु का सन्यास कृत, सन्यास लेने का यह भी एक कारण है, और भी बहुत कारण है। प्रकट लीला में बहुत लोग महाप्रभु का अपराध करने लगे थे, क्योंकि महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भावावेश में आकर राधे राधे इत्यादि कहने लगते थे, अष्ट सात्विक विकार होने लगता था, तो दूसरों को अपराध करने का मौका न मिले इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। और भी महाप्रभु ने सोचा कि यदि मैं गृहस्थ रहता हूं तो केवल नवद्वीप में रहने वाले लोगों का उद्धार होगा, और यदि संन्यास ले लिया तो परिव्रजा का चार्य बनकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करूंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और भारत में रहने वाले सभी भक्तों का उद्धार किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम संन्यास कृत। संन्यास कृत का अर्थ होता है संन्यास धारण करने वाले। तो महाभारत के श्लोक में संन्यास कृत जो नाम आया है और कोई नहीं चैतन्य महाप्रभु के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से संन्यास लिया। तत्पश्चात संन्यास कृत शम संधि जुड़ी हुई है, इसलिए शायद आप समझ नहीं पाओगे। संन्यास कृत क्षम को अलग किया जाए तो शम होता है, तो भगवान का एक नाम शम है। शम का अर्थ होता है सर्वभूतानाम शांतियेति वा शम, जो सभी भूतों को सभी जीवों को शांति प्रदान करे उसे शम कहा जाता है। इस संसार में लोग अशांत है, और अशांति का कारण क्या है, कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। इस संसार में जिसको भुक्ति भोग की लालसा है, विषय भोग की वासना है, जिसको मुक्ति की कामना है, जिसको सिद्धि की कामना है, वे सब लोग अशांत है, सब लोग अशांत। परंतु शांत कौन हो सकता है, कृष्ण का भक्त ही शांत हो सकता है। इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत। जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति भी हमारी तरह नहीं प्रेमा भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपने आप को भक्त कहते हैं, परंतु कौन शांत है बताइए, सब लोग उद्विग्न है, यहां से वहां भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु का नाम शांत क्यों है, क्योंकि उन्होंने जगत के लोगों को प्रेमा भक्ति प्रदान की, प्रेम भक्ति। भगवान के बहुत बहुत अवतार हुए परंतु यह नहीं कर सके जो चैतन्य महाप्रभु ने किया। इस संसार में भगवान को प्रभु कहा जाता है, प्रभु का अर्थ होता है कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, जो पॉसिबल है जो इम्पॉसिबल है ये सभी बातों को करके दिखा दे उसे प्रभु कहा जाता है। कृष्ण को प्रभु कहते हैं, भगवान को प्रभु कहते हैं, परंतु कलयुग में जो यह अवतार हुआ इसे महाप्रभु कहा जाता है, केवल प्रभु नहीं। क्यों, भगवान राम आए, कृष्ण आए, नरसिंह वामन वराह आए, परंतु ये लोग आकर क्या किए, लोगों का विनाश किए, विनाश के अलावा कुछ नहीं किए, केवल विनाश। हिरणाकश्यप को मारने के लिए नरसिंह देव भगवान हिरणाकश्यप को मारा, वराह आए हिरणाक्ष को मारा, राम आए तो बाली खर दूषण इत्यादि रावण को मारा, और कृष्ण आए तो कंस अगासुर बकासुर पूतना सबको मारे, परंतु प्रेम और भक्ति नहीं दिए। भगवान श्री रामचंद्र के सामने कुंभकर्ण और रावण खड़ा था, परंतु भगवान ने बाण मारकर उसे मार डाला, खत्म कर दिया, प्रेम भक्ति नहीं दी। कृष्ण के सामने एक से एक लोग आए, कृष्ण ने मार दिया, भक्ति नहीं दिए। भगवान का एक ऐसा विलक्षण करुणा वरुणालय अवतार हुआ जिसमें पापी से पापी भगवान को मारने वाला व्यक्ति भी यदि आया तो उसे चैतन्य महाप्रभु ने मारा नहीं, उसे अपने गले लगाकर अपनी प्रेम भक्ति का दान किया। और सब अवतारों में भगवान ये नहीं किए, मार डाले, मारना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी मार देना बड़ी बात नहीं है, परंतु उस दुष्ट को उस असुर को उसकी दुष्टता छुड़ाकर भक्ति में प्रेम में लगा देना यह बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु के सामने एक से एक पापी तापी म्लेच्छ यवन शबर आए, परंतु महाप्रभु ने उसे मारा नहीं, उसे स्वयं अपनी प्रेम भक्ति अपने गले लगाकर उसे कृष्ण भक्ति का दान किए, इसलिए उसे महावदान्याय कहा जाता है। महाप्रभु को महाप्रभु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे घर घर जाकर सबका उद्धार किए, पात्र अपात्र देखे बिना। इस संसार में दानी तो बहुत होते हैं, रूप गोस्वामी महाप्रभु को महावदान्याय कहते हैं। दानी बहुत देखने मिलते हैं, कुछ लोग 100 देते हैं, कुछ लोग 200 देते हैं, कुछ लोग लाखों दे देते हैं, परंतु ऐसा दानी कभी आपने देखा कि जो दान भी दे और दान को धारण करने के लिए कटोरा भी दे? दान सब लोग देते हैं परंतु दान को टिकाने का पात्र कोई नहीं देता। भगवान के बहुत बहुत अवतार हुए, हो सकता है भगवान ने दान दिया, दान का पात्र नहीं दिया। इस कलयुग में कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई पात्र नहीं था। यवन मुसलमान म्लेच्छ शबर सुअर को खाने वाले कोई पात्र नहीं था। महाप्रभु ने पात्रता प्रदान की और पात्र देकर कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान की, इसलिए रूप गोस्वामी को महावदान्य कहना पड़ा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे राम राम राम
हरे। महाप्रभु ने बहुत बहुत लोगों को अपना प्रेम दिया, प्रेम भक्ति प्रदान की। आप लोग चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत खोल कर देख लीजिए एक से एक। कितना गिनाऊं, मेरे पास 2 मिनट बची है। आइए संक्षिप्त में मैं कह देता हूँ कि इस प्रकार से महाप्रभु ने अपने प्रेम भक्ति का दान किया और प्रेम भक्ति का दान करके संसार के लोगों को भक्ति में लगाया। केवल मनुष्य को नहीं, मुसलमान को भी। एक मुसलमान एक मुस्लिम, अब छोटे श्लोक तो पूरा नहीं होगा, इस शब्द को क्लियर कर देता हूँ। शम शब्द जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, महाप्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति कैसे प्रदान की। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वृंदावन जा रहे थे और वृंदावन जाते जाते उन्होंने रास्ते में धोबी घाट देखा। चैतन्य मंगल में यह कथा है। तो उस धोबी घाट में एक धोबी कपड़ा धो रहा था, तो सब भक्त चल रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उस टुकड़ी से निकलकर उस धोबी के पास जाकर खड़े रह गए और खड़े रहकर धोबी को कहा कि धोबी जी, ओ धोबी जी। तो धोबी ने कहा कि हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, हम तो धोबी है, आपको क्या दे पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ चाहिए नहीं, आप हरी बोलो, आप हरी बोलो। धोबी ने कहा कि न जाने कौन सा कहां से यह मंत्र लेकर आया है, यदि बोल दूंगा तो पागल हो जाऊंगा। कहा नहीं बोलूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरी बोलो। धोबी ने कहा कि मैं यदि आपकी तरह हरी बोल बोलने लगा तो मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मरेंगे, यदि ये कपड़ा नहीं धोऊंगा तो पत्नी और बच्चे भूखे मरेंगे। महाप्रभु ने कहा कि एक काम करो, कपड़े मैं धो देता हूं, आप हरी बोलो। अब तक तो धोबी नीचे मुंडी रखकर बात कर रहा था, लेकिन महाप्रभु ने जब कहा कि कपड़ा मैं धो देता हूं आप हरी बोलो, तो धोबी ने सोचा ये कौन सा व्यक्ति है। मुंडी ऊपर किया और देखा तो तेज छलक रहा था चैतन्य महाप्रभु के मुख से और आंखों से भाव छलक रहा था, और चैतन्य महाप्रभु पूर्ण करुणा से पूर्ण भाव से एक ही वाक्य कह रहे थे कि धोबी हरी बोलो, आपके लिए कपड़ा मैं धो दूंगा। जब धोबी ने कहा कि ठीक है ये इतना प्रेम से कह रहे हैं, तो धोबी एक बार बोल दिए हरी बोल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आंखों में आंख डालकर कहा हरी बोलो। दूसरी बार धोबी कहता है हरी बोल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरी बोल। धोबी ने कहा हरी बोल। तीसरी बार हरी बोल जब कहा, चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने गले से लगा दिया। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने गले से लगाया कि चैतन्य महाप्रभु से इतना करंट पास हुआ, क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जिस भाव में जिस रस में भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, वह सारा भाव और रस डाइवर्ट हो गया धोबी में। और वह धोबी जो हरी बोल बोलने के लिए ना कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु से दूर होकर नाचने लगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, नित्य निरंतर हरी बोल कृष्ण कृष्ण करते करते नाचने लगा। चैतन्य महाप्रभु दूर हो गए। वहां पर लोचनदास ठाकुर लिखते हैं कि जैसे कोई बालक किसी खिलौने में चाबी डालकर उसे छोड़कर दूर हो जाता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु धोबी को स्पर्श करके दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए और देखने लगे ये क्या कर रहा है, और सारे भक्त बैठ गए। तो वो धोबी नाचने लगा, गाने लगा, हरे कृष्ण हरि बोल आधे घंटे तक वे बंद होने का नाम नहीं, कभी रो रहा है, कभी अष्ट सात्विक विकार, कभी मूर्छित, और जोर जोर से गाने गाने लगा, भगवान का नाम लेने लगा। उतने में उसकी पत्नी ने देखा कि ये कई देर से गए घर पर नहीं आए, तो पत्नी धोबी घाट पर आई उसको देखने के लिए, तो देखा अरे बाप रे, ये तो जीवन में कभी हिले नहीं है और आज इतना नाचने लगे, कहां से नाचना सीख गए। मंदिर में कीर्तन में जाते हैं, कोई भक्त जबरदस्ती यदि दाल भी देता है तो दो तीन बार ऐसे ऐसे करके बाहर आ जाते हैं। जीवन में कभी नाचे नहीं और इतना सुंदर कैसे नाचने लगे महाप्रभु की तरह, लगता है कि इसे कुछ भूत लग गया है, लगता है इसे कोई भूत स्पर्श कर दिया है, परंतु वो क्या जाने, इसे भूत नहीं, इसे नंद का पूत स्पर्श कर दिया है। सच्ची का इसे नंद का पूत नहीं, इसे सच्ची का सूत स्पर्श कर दिया है, भूत नहीं। तो नाचने लगा, उसकी पत्नी विचलित हो गई, ये क्या हुआ। उतने में वो डर गई, लगता है भूत स्पर्श कर दिया है, चिल्लाने लगी, गांव वालों यहां पर आओ यहां पर आओ, इसे भूत लग गया। महाप्रभु बैठे बैठे देख रहे हैं, सारे गांव वाले एकत्रित हुए, अरे भाई ये धोबी आज तक कभी नाचा नहीं है, हमने बहुत नचाने का प्रयास किया आज तक नहीं नाचा, इतना क्यों नाच रहा है। तब गांव वालों में से कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, एक व्यक्ति ने थोड़ा साहस किया और साहस करके उसके पास गया उसको देखने के लिए, पकड़ने के लिए। तो जैसे ही साहस करके धीरे 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 उस धोबी के पास गया और धोबी के दोनों हाथ पकड़े, ये क्या कर रहे हो, धोबी ने उसे गले लगा लिया। जैसे धोबी ने उसे गले लगाया, लगता है वह करंट उसको पास हो गया, वह भी हरी बोल हरी हरे कृष्णा दोनों नाचने लगे। अब गांव वाले सोचने लगे अब तो डेंजर है यहां पर जाने। दोनों नाचने लगे, आनंद भर कीर्तन में नाचने लगे, अब क्या करें, उसकी पत्नी से नहीं रहा गया, अब कैसे भी पत्नी है, पत्नी गई, पतिदेव क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इतना कहते कहते गई, उस धोबी ने पत्नी को गले लगा लिया, पत्नी भी नाचने लगी, हरे कृष्णा कृष्णा ये और कुछ नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने अपनी कृपा से, आज कोई जीवन भर इतनी मेहनत करता है फिर भी यह भाव को प्राप्त नहीं कर सकता, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा दे दी। केवल मनुष्य को नहीं, मुसलमान को, गाय खाने वाले को, एक से एक पापी तापियों को महाप्रभु अपनी कृपा बांटते रहे, यहां तक प्राणियों को भी नहीं छोड़ा। आया है चैतन्य भागवत और मंगल में, एक बार महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे और बाजू में कई हाथी स्नान कर रहे थे, थोड़ा पानी लेकर हाथी के ऊपर डाला तो जो धोबी जिस प्रकार से नाचने लगा हाथी भी नाचने लगा। झारखंड के जंगलों में एक बार बलभद्र के साथ चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर नाचते नाचते जा रहे थे और बाजू में एक शेर सो रहा था। वहां पर उनके सेवक ने सोचा कि ये गया महाप्रभु का स्पर्श यदि उनके शेर से हो गया तो ये खा जाएगा। महाप्रभु नाच रहे थे, उसे ये पकड़ने के लिए जाए, उतने में तो महाप्रभु का चरण उसे स्पर्श हो ही गया, तो शेर उसको मारने के बदले शेर भी महाप्रभु की तरह हरे कृष्णा नाचने लगा। इस प्रकार से झारखंड के जंगलों में जन्मजात स्वभाव, सिंह का स्वभाव क्या होता है, किसी भी प्राणियों को खा जाना। कहते हैं कि महाप्रभु झारखंड के जंगल से जाते थे तो उनके साथ हाथी हिरण खरगोश और सिंह सब लोग साथ में नाचते, जिसका स्वभाव है एक दूसरों को खाना, परंतु जन्मजात स्वभाव भूलकर महाप्रभु के उस भाव में, महाप्रभु की कृपा में, कृपा के अंतर्गत शुद्ध भक्ति प्राप्त करके नाचने लगते थे। इस प्रकार से प्राणियों को और यहाँ तक शिवानंद सेन के कुत्ते को भी महाप्रभु ने नहीं छोड़ा, उसे भी भगवान के धाम में पहुंचा दिया है। तो जो महाप्रभु प्राणियों के ऊपर कृपा करते हैं तो हम जैसे मनुष्यों के ऊपर क्यों नहीं करेंगे। बस केवल एक कदम बढ़ाइए, भगवान 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। भक्ति कीजिए, हृदय में इच्छा रखिए, भगवान के नाम का जप कीजिए और गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव दिवस में आप भाग लीजिए, जरूर उनकी कृपा मिलेगी। इसी आशा और अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्णा तो सुवर्ण वर्ण 1, हेमांगो 2, वरांग 3, चंदनांगदी 4, संन्यासकृत 5, शम 6, हमने 6 नाम के ऊपर चर्चा की। ये 6 नाम चैतन्य महाप्रभु के हैं, फिर शांत बाकी रहा वह भी महाप्रभु के लिए है, फिर निष्ठा शांति और परायणम, ये 4 नाम महाप्रभु के ही हैं। इसका अर्थ है, शास्त्र प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही है। केवल महाभारत ही नहीं, और भी गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, सभी पुराणों में यह प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम।
क्षमा कीजिए, श्लोक आधा छूट गया है, लेकिन फिर भी आप सब बुद्धिमान हो, इसे समझ गए होंगे या किसी ना किसी से समझ लेंगे। हरे कृष्ण।